रात के 1 बज रहे थे और हाफिज शहर की सुनसान गलियों पर गाड़ियों के दौड़ने की आवाज हो रही थी। बीच में राघवेंद्र की जीप थी जो काफी धीमी गति से चल रही थी और उसके पीछे रिपोर्टर को बांधा गया था। वो उसे घसीटता हुआ घर से कहीं दूर ले जा रहा था। राघवेंद्र के आगे बाइक पर लल्लन था तो उसके पीछे भी 2 गाड़ियां आ रही थी जिसमें उनके बाकी के आदमी थे। रिहायशी इलाके से दूर जाने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी। राघवेंद्र गाड़ी से बाहर आया और पीछे की तरफ पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठा लिया। उसने उस कुल्हाड़ी से एक ही झटके में रस्सी काट दी जिससे रिपोर्टर गाड़ी से अलग हो गया। तो कैसी रही आपकी यात्रा रिपोर्टर बाबू, राघवेंद्र ने हंसते हुए पूछा। रिपोर्टर के मुंह पर टेप थी जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अरे तुम कैसे बोलोगे, तुम्हारे मुंह पर तो ये टेप लगा है। रुको, हम तुम्हारा मुंह खोल देते हैं ताकि तुम बोल सको, राघवेंद्र ने कहा और एक झटके के साथ रिपोर्टर के मुंह से टेप हटा दिया। इसी के साथ वो जोर से चिल्लाया, पार्टी का इंतजाम किए हो ना, राघवेंद्र ने अपने आदमियों से चिल्लाकर पूछा। अरे भैया जी आप फिक्र मत कीजिए, पीछे गाड़ियों में सारा सामान आ रहा है, लल्लन ने कहा। राघवेंद्र ने रिपोर्टर की तरफ देखा जो कि अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, खड़े हो जाओ रिपोर्टर बाबू, चलो पार्टी करते हैं। वो कौन सा गाना है लल्लनवा जो तू गाता रहता है?
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लल्लन गुनगुनाते हुए कूदने लगा।
उसके ऐसा करने पर राघवेंद्र हंसने लगा। थोड़ी देर बाद बाकी की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच चुकी थीं। अगले 10 मिनट में राघवेंद्र के आदमियों ने बीच सड़क पर डेरा डाला। पीछे एक जीप की छत पर एक बड़ी सी कुर्सी बंधी हुई थी जो किसी सिंहासन की तरह लग रही थी। उन्होंने सभी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर दी जिसकी वजह से वहां अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। सड़क के बीचों बीच वो सिंहासन जैसी कुर्सी लगाई गई।
क्या रिपोर्टर बाबू के लिए कुछ नहीं लेकर आए, राघवेंद्र ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा।
है ना दादा, अब आपका मेहमान है तो खातिरदारी में कमी थोड़ी ना छोड़ेंगे, एक आदमी बोला और अंदर से हाथ से बुनी हुई एक छोटी कुर्सी लेकर आ गया। राघवेंद्र ने रिपोर्टर को वहां पर बैठने का इशारा किया। वो डर से कांप रहा था। वो उस कुर्सी पर बैठने के बजाय वहीं पर खड़ा था। लल्लन ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, बहरा हो गया है का, सुन नहीं रहा, भैया जी ने तुझे बैठने का इशारा किया है, चल बैठ चुपचाप कुर्सी पर। लल्लन ने रिपोर्टर को कुर्सी की तरफ धक्का दिया और वो नीचे जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठ गया।
पार्टी शुरू की जाए, राघवेंद्र ने कहा तो रिपोर्टर ने डरते डरते पूछा, ये पार्टी किसके लिए की जा रही है?
ताकि तुझे तेरे मरने पर अफसोस ना हो, जैसे तुम्हारे काम है लगता नहीं कि ऊपर वाला तुम्हें स्वर्ग में भेजेगा, इसलिए मरने से पहले स्वर्ग के दर्शन कर लो बबुआ, राघवेंद्र के जवाब देते ही रिपोर्टर उसके पैरों में गिर गया।
प्लीज हमको जाने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा।
ये तो ऐसे भीख मांग रहा है जैसे हम इसे तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं। अरे तुम्हारी जगह आज हम होते तो अच्छे से पार्टी एंजॉय करके फिर मस्त मजे से मरते, राघवेंद्र ने उसे उठाते हुए कहा।
धत भैया जी, ई का बोल रहे हैं आप, मरे आपके दुश्मन, लल्लन ने बीच में टोका।
उसके लिए तुम्हें दुआ मांगने की जरूरत नहीं है लल्लनवा, उनको तो हम वैसे ही खत्म कर देंगे। चल बे जल्दी पार्टी शुरू करो, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, राघवेंद्र ने कहा।
उसके कहने के बाद वहां मौजूद लोगों ने शराब की बोतलें खोली। कुछ आदमी गाड़ी से बड़े स्पीकर उठाकर लाए। सब सिस्टम होने के बाद वहां तेज आवाज में गाने बजने लगे।
ये कैसी पार्टी है, कौन अरेंज किया ऐसी घटिया पार्टी, राघवेंद्र ने नाराज होकर कहा।
भैया जी प्रवीण दादा लड़की को लेने गए हैं, बस 5 मिनट में पहुंच ही रहे हैं, लल्लन ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद प्रवीण एक लड़की के साथ वहां पहुंच चुका था। वहां मौजूद 2 आदमियों ने सबको शराब की बोतल पकड़ा दी और वहां लाउड म्यूजिक बज रहा था जिस पर लड़की नाच रही थी। राघवेंद्र भी उसके साथ ही थिरक रहा था, वो जबरदस्ती रिपोर्टर को भी अपने साथ नाचने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही 2 बजे अचानक राघवेंद्र ने म्यूजिक बंद किया और अपना हाथ उठाकर बोला, पार्टी खत्म। इसी के साथ वहां पर बिल्कुल शांति छा गई। 7-8 लोगों को छोड़कर बाकी के सभी लोग सारा सामान उठाकर लड़की को लेकर वहां से जा चुके थे। चलो अब खातिरदारी शुरू करते हैं बबुआ जी की, बोलकर राघवेंद्र कुर्सी पर बैठ गया और इसी के साथ वहां मौजूद सभी गुंडे रिपोर्टर को बेरहमी से पीटने लगे। पूरे दिन से हो रहे टॉर्चर से वो पहले ही परेशान था, ऊपर से वो लोग बुरी तरह से मार रहे थे। वो दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो लोग लगातार उस रिपोर्टर को मारे जा रहे थे। वो चिल्लाते हुए दया की भीख मांग रहा था, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो वही दिखाएंगे ना जो हमें दिखाने को बोला जाएगा, हम वादा करते हैं कि आज से भैया जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, रिपोर्टर ने रोते हुए बोला।
अरे बोलोगे तो तब ना, जब तुम बोलने के लायक रहोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया जी के खिलाफ जबान खोलने की, हम तो कहते हैं जबान ही काट देते हैं इस ससुरे की, फिर आगे से बोलने के लायक भी नहीं रहेगा, उनमें से एक ने चिल्लाकर बोला। आप एक बार आदेश दीजिए भैया जी, फिर देखिए हम का हाल करते हैं ये रिपोर्टर का। आप कहो तो लाइव ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं एक ही कुटाई का, लल्लन बोला। हमारी जान बख्श दो, हम आगे से नहीं करेंगे। हमारी माँ के हमारे अलावा और कोई नहीं है, हमारे लिए नहीं तो उनके लिए हमारी जान बख्श दो। रिपोर्टर रोते हुए अपनी जान बख्शने की गुहार लगा रहा था। उसके रोने धोने का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो उसे लगातार पीटे जा रहे थे। वहीं से कुछ ही दूरी पर कुर्सी पर बैठा राघवेंद्र अपनी मूछों को ताव दे रहा था। अचानक वो उठा और अपने पास पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर उस आदमी के पास पहुंचा। देखो बबुआ, हम इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दे सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ बोलने की? क्या कहा था तुमने? राघवेंद्र प्रताप कुछ सोचते हुए अंदाज में बोला। हमारे खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, हमारी छवि अच्छी नहीं है। एक बार पूछ तो लेते कि क्या बोलना है क्या नहीं, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी भारी आवाज में कहा। भैया जी, हम कल सबके सामने माफी मांगने को तैयार हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी छवि को भी सुधार, रिपोर्टर बोल रहा था। तभी राघवेंद्र प्रताप सिंह उसकी बात को बीच में काट कर बोले, मतलब क्या है बे तेरे कहने का? हमारी छवि खराब है जो तू सुधार देगा? इस बात पर दो और लगाओ इको। राघवेंद्र प्रताप के कहने पर वहां मौजूद गुंडों ने फिर से उसकी धुलाई करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद राघवेंद्र सिंह ने उन्हें रुकने का इशारा किया और पास पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर उसके सर के बीचों बीच कर जोर से वार किया। सड़क पर चारों तरफ खून बिखरा था और रिपोर्टर के सिर का ऊपरी हिस्सा दो हिस्सों में बटा हुआ था। उसे देखकर कुछ लोगों ने अपने मुंह किनारे कर लिए तो उनमें से कुछ दांत निकाल कर हंस रहे थे। कहता था हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ई की भी रपट लिखाई दियो, बोलते हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह भी उसकी तरफ देखकर हंसा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रिपोर्टर की लाश वहीं पर छोड़कर वो सब वहां से जा चुके थे। दूसरी तरफ रात को वैदेही देव और प्रतीक यशवर्धन के घर पहुंच चुके थे। वहां पर अनंत देसाई और यशवर्धन पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। वेलकम मिस रघुवंशी, यशवर्धन ने मुस्कुराकर बोला। वैदेही वहां फॉर्मल में ही आई थी। उसको फिर से उसी अवतार में देखने के बाद यशवर्धन धीरे से बड़बड़ाया, आ गई फिर से रिपोर्टर बनकर, कभी तो अपनी नॉर्मल लाइफ में रहा कीजिए। थोड़ी देर हल्की फुल्की बातचीत और चाय नाश्ते के बाद वो लोग यशवर्धन के मीटिंग रूम में आए। यशवर्धन के पिता हर्षवर्धन जी की पहले भी वहां पर सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, इस वजह से उसे काफी अच्छे से बनाया गया था। वो एक साउंड प्रूफ कमरा था जिसके बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल और उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी थी।
सामने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा था ताकि किसी भी टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस किया जा सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम पहले राघवेंद्र के दोस्त थे, इस वजह से हम उनके खिलाफ काफी कुछ जुटा पाए। उन सबको हमने एक हार्ड ड्राइव के अंदर सेव करके रखा है, बोलते हुए यशवर्धन ने एक चिप निकाली और लैपटॉप में लगा दी। सामने प्रोजेक्टर पर राघवेंद्र प्रताप सिंह की एक बड़ी सी फोटो आ रही थी जिसमें उसने हाथ जोड़ रखे थे। ये तो मुझे शक्ल से ही गुंडा नजर आ रहा है, वैदेही ने फोटो देखते ही बोला। सिर्फ नजर ही नहीं आ रहा वैदेही जी, ये एक बहुत बड़ा गुंडा है भी, अनंत देसाई ने जवाब दिया। यशवर्धन ने दूसरी फोटो को निकाली जिसमें यशवर्धन के परिवार की फोटो थी। उनका परिचय देते हुए उसने कहा, राघवेंद्र के पिता महेंद्र प्रताप सिंह बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। वो एक बहुत बड़े जमींदार थे और उनका पुरखों से यही काम चलता आ रहा है, इस वजह से इनकी काफी जमीन जायदाद है। इनके गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में इनका अच्छा खासा दबदबा है जो कि इनके पुरखों के समय से चलता आ रहा है। हाँ, शायद उन्हीं की आड़ में वो ये सब क्राइम कर रहा है, प्रतीक ने कहा। ये है उसकी माँ सुमित्रा सिंह, जहाँ तक मैंने इन्हें जाना है इनके लिए इनका परिवार बहुत महत्व रखता है। अगर कोई इनके खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो ये भी किसी घायल शेरनी से कम नहीं है जो किसी भी पल शिकार कर सकती हैं। राघवेंद्र हर एक फोटो को जूम करके सबकी तस्वीर अच्छे से दिखा रहा था। उसने आगे कहा, उसका बड़ा भाई शिवेंद्र और उसकी पत्नी आरती। शिवेंद्र एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी था जब तक कि उसे उसकी नौकरी से निकाला नहीं गया। आजकल ये राघवेंद्र के अकाउंट संभाल रहा है। इसका तो एक अच्छा खासा परिवार है, ये चाहे तो इसे इन गलत कामों को करने से रोक सकता है, लेकिन इन सबको देखकर लग रहा है यही इन्हें सह रहे हैं, देव ने कहा। राघवेंद्र प्रताप सिंह पर हम बाद में आते हैं। ये है उसका सबसे छोटा भाई मानव, ये यूके में स्टडी कर रहा है और यहाँ ना के बराबर आता है, इस वजह से मैं इसे ज्यादा नहीं जानता, यशवर्धन ने मानव की फोटो स्किप कर दी थी। यशवर्धन उन सबको उसके परिवार के बाकी सदस्यों और खास आदमियों की जानकारी दे रहा था जिनमें लल्लन था। उसके बारे में बताते हुए यशवर्धन ने कहा, लल्लन बिहार से है और तब से राघवेंद्र के साथ है जब से वो 10 साल का था। उसके घर वाले यहाँ महाराष्ट्र में मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में उन सबकी जान चली गई। काम करते हुए राघवेंद्र को लल्लन मिला और उसने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। ये उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानता है। वो लोग उनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे। इन सबके बीच वैदेही ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मानव की फोटो निकाल रखी थी। वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। तो ये है राघवेंद्र की सबसे कमजोर कड़ी, वैदेही ने अपने मन में सोचा और मानव से जुड़ी हर छोटी जानकारी निकालने लगी।